ओम शांति। बाबा ने कई बार बताया है कि अंत घड़ी का पेपर जो आएगा कितने समय का आएगा? एक सेकंड का। एक सेकंड में हार और जीत। किस बात की हार और जीत? अपने संकल्पों की, अपनी स्मृति की। उस घड़ी में नष्ट मोहा स्मृति लगता रहा तो बस अंत मते सुगते बाबा तक पहुंच जाएंगे। और यदि कई और बात में आत्मा उलझन में है, आत्मा डर गई है, कोई व्यक्ति याद आया, कोई वैभव याद आया, कोई स्थान याद आया, कोई सेवा याद आई, सब बातें आत्मा को हिला लेंगी और फिर गड़बड़ हो जाएंगी। तो बेशक अंतिम पेपर है एक सेकंड का, परंतु उसकी तैयारी में कितना टाइम लगता? जीवन भर। जिस तरह से हम दादियों को देखते हैं, बेशक उन्होंने इतने वर्षों से तपस्या की है, परंतु तो भी अभी भी वो अपनी तपस्या को चालू रखते हैं। ऐसे नहीं कि वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है तो बस हम ठीक ही होंगे। नहीं, तो भी 4 बजे का योग, शाम का योग, दिन में ट्रैफिक कंट्रोल और ये सब तो बातें छोड़ो, परंतु हम देखते हैं कि श्वासोश्वास दादियों को बाबा की याद रहती ही है। तो वो स्थिति हमारी बन जाए। और यदि हम ये चाहते हैं कि अब से ही हम ऐसे पुरुषार्थ करें जो हमारी स्थिति ऐसे बने, तो हमें क्या करना होगा? अपने संकल्पों पर इतना ध्यान देना होगा। जब रिट्रीट चल रही थी तो उन्हों को मैंने एक बारी बताया कि दादी जानकी ने कहा, थिंक बिफोर यू थिंक। संकल्प चलने से पहले, उससे पहले आप सोचो। तो उन्होंने कहा, इसको स्पष्ट करो। तो मानो कि कोई भी बात होती है और हमको खुद का पता है, और जब बाबा कहते हैं कि स्वर की पहचान इतनी होनी चाहिए जो हमें मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार के संस्कार हमको इमर्ज करनी है, उसको कहते हैं राजयोग। अपने संस्कारों पर राजाई प्राप्त करना, अपने संकल्पों का मालिक बनना। तो कोई बात में कोई ऐसी बात आती है तो हमको पता है कि हमारा रिएक्शन यदि हम संभलेंगे नहीं तो कुछ और ही होगा। तो एक सेकंड के लिए बात सामने है, परंतु उस एक सेकंड में हमने अपने मन में ये बात पक्की कर ली कि हमको उस रास्ते से नहीं चलना है। संकल्प शुरू ही नहीं करनी है। संकल्प शुरू हो गए तो फिर तो 1000 भी बहुत फास्ट चल पड़ेंगे, उनको रोकना मुश्किल होगा। परंतु संकल्प शुरू करने से पहले हम वो सोच करके वहां ही ब्रेक लगा लेवे और उसके बदले में कुछ पॉजिटिव संकल्प हम सोचें। तो जब इस प्रकार का हमें ध्यान होगा तो फिर हम देखते जाएंगे कि कैसे अपने संकल्पों पर हम विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। और जितना जितना अब भी हमारे संकल्प श्रेष्ठ और शुद्ध होंगे, सहज ही हमारी अभी भी बाबा की याद अथवा स्मृति स्वरूप हम बनते जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि रिलीजन इज माइट। तो सत्युग में तो ये पता भी नहीं होगा कि हम विश्व के मालिक हैं और कोई ये हमसे राजाई छीन नहीं सकता। परंतु संगम युग में हमें वो अनुभव हो सकता कि धर्म के मार्ग पर चलने से बाबा कितनी हमें शक्ति देता। आज भी बाबा ने कहा कि कदम कदम पर आत्मा ताकत भरती जाए। तो ताकत भरने के लिए तो हमें एक तो ध्यान रखना होता, परंतु दूसरी तरफ हमको कहां पर भी लीकेज न हो वो भी ध्यान रखना होता। क्यों? क्योंकि शक्ति मिले, ताकत हमें मिले, और फिर कहां थोड़ी सोराख है और वो बह जाए तो फिर हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा। शक्ति भरने के लिए बहुत अटेंशन चाहिए और शक्ति गुम होने में अटेंशन चाहिए। बिगर अटेंशन से शक्ति चले जाती है और शक्ति मिलती है बस उस एक से संबंध जोड़ने की, परंतु शक्ति खोने की अनेक रास्ते होते। तो फिर इतना हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने संकल्पों पर इतना अच्छी तरह से थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले हम समझ जाए, सोच लेवे कि हमें किस राह पर चलना है। तो हम देखते हैं कि जबकि हम दिन भर अटेंशन रखते हैं अपनी स्थिति के ऊपर, तो ही फिर जिस घड़ी योग में बैठना होता कनेक्शन जुटता और ताकत मिलती। और खास करके अमृत वेले के लिए भी दिन भर जो कुछ बीता, कहते हैं जो दिन भर चलता है वो स्वप्न में भी आता, और फिर जो स्वप्न होते हैं उस अनुसार फिर नेक्स्ट डे हमारा अमृत वेले का चार्ट होता। तो यदि दिन भर हमारा अटेंशन रहा है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प रचने के लिए, तो फिर नेक्स्ट डे हमारा अमृत वेला भी इतना फ्रेश होगा अथवा इतना हम बाबा से ताकत ले सकेंगे। तो फिर मैं देखती हूं कि दिन भर हमें कौन सी बात पर ध्यान रखना होगा जिस कारण से कोई सोराख ना आ जाए। छोटी सी सोराख भी होती है, आपने कभी देखा होगा नलके से एक बूंद भी निकलती हो, आप बाल्टी नीचे रख लो थोड़े समय के बाद एक एक बूंद का भी कितना सारा इकट्ठा हो जाता। बस एक छोटा सा बूंद भी टप 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 वेस्ट होता जाए तो फिर बाल्टी भर जाती। तो हमारी ताकत भी कोई छोटी सी बात में भी ताकत हमारी खो जाती, उसमें कौन सी एक बात विशेष, क्रिटिसिज्म। मनुष्य का स्वभाव हो गया है द्वापर और कलयुग में अपना औरों के साथ कंपैरिजन करने का, भेंट करने का, उनको ज्यादा है मुझे कम है, उनको ये है मुझे ये है, ये जो आदत होती है भेंट करने की कंपैरिजन की, फिर आखिर उसमें भी फिर क्रिटिसिज्म आ जाती है। तो फिर कहां पर भी हम यदि अपने को ये ट्रेनिंग देते हैं कि मुझे सदा हर आत्मा के प्रति उसकी विशेषता देखनी है, तो फिर वो विशेषता देखते देखते वो भी एक आदत बन जाती और फिर वो जो सोराख है क्रिटिसिज्म की वो वहां ही बंद हो जाती। नहीं तो इस सोराख के कारण, क्रिटिसिज्म के कारण आत्मा की ताकत चली जाती, खुशी भी चली जाती परंतु ताकत भी चली जाती। और बहुत करके हम इस बात पर इतना अटेंशन नहीं देते हैं, परंतु मैंने देखा है जो दादियां हैं वो कोई की भी कहानी आजकल सुनने के लिए तैयार होती ही नहीं है। कोई समय था जो उनके पास जाओ किसकी कहानी बैठ के सुनाओ तो वो आपको समझाएंगे, थोड़ा फिर कहेंगे कि ऐसे नहीं करो ऐसे करो, मतलब वो कोई तरीका बताते थे। आज उनकी स्टेज वो है जैसे ब्रह्मा बाबा, लास्ट वर्ष में ब्रह्मा बाबा को कोई कहानी कुछ सुना नहीं सकता था, बाबा की दृष्टि से ही वो आत्मा फुल स्टॉप उसको लग जाता था, शुरू ही नहीं होती थी कहानी, शुरू करे और फिर बंद करे ऐसे भी नहीं, परंतु बाबा की दृष्टि में ही ऐसी शक्ति थी जो बाबा कहेंगे भी बच्चा कुछ कहना है तो मन ही नहीं होगा कि हम बैठ करके बाबा के सामने कुछ कहानी सुनाए, तो फिर आत्मा चुप हो जाती थी। तो मैं देखती हूं कि दादी जानकी के साथ भी अभी इस बारी ये भी एक कमाल है कि जनवरी में भी दादी लंदन आई, मई मास में भी आई, फिर अभी अगस्त मास में भी आई। तो इस आयु में इतनी ट्रैवलिंग भी हो और फिर क्लासेस भी चलते रहे, एक तो ट्रैवलिंग हो वो ही बड़ी बात है, परंतु फिर इतना ब्रेन अच्छी तरह से काम करे, जो क्लासेस भी चलते रहे, ये एक भगवान की कृपा कहो, जादू कहो, कुछ भी कहो। और उसका पुरुषार्थ, जिस आत्मा ने इतना अपनी बुद्धि पर ध्यान रखा है कि बुद्धि में कुछ व्यर्थ बात न चले, तो नेचुरली अभी भी उसका रिजल्ट, वो ताकत उसको मिलती रहती। परंतु इस बारी दादी बार बार एक ही लेसन सबको यही पक्का कराती रही, सबकी विशेषता देखो, हर एक की विशेषता देखो, और कुछ बात उसकी देखो भी नहीं। और यदि कोई कहता है कि किसमें कुछ विशेषता है ही नहीं, तो हम क्यों उसको रिगार्ड देवे, राइट? रॉन्ग। जरूर कुछ विशेषता है, वो बाबा के बच्चे बन करके बाबा का हाथ पकड़ के चल रही हैं, तो जरूर कुछ विशेषता है। अच्छा, और कोई हमको विशेषता नजर न भी आए, परंतु विश्व की इतनी 7 बिलियन आत्माओं में से उन्होंने अपनी जीवन ब्राह्मण जीवन बनाई है, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। बाबा को बाबा कहा, बाबा को मान करके, अपना बाप समझ करके चल रही हैं, निश्चय बुद्धि है, तो यही एक बड़ी विशेषता है। परंतु उसमें एक और विशेष बात ये आती कि यदि मैं ये ध्यान रखती हूं कि मुझे अपने संस्कार किस प्रकार से बनाने हैं, मुझे अपने दैवी संस्कार अभी बनाने हैं, राइट? ऊपर तो परमधाम में तो ट्रांसफॉर्मेशन संस्कार की नहीं होंगी, और न कि वहां पर कोई अशुद्ध बातें आत्मा अपने साथ ऊपर लेके जाएंगी, जो कुछ है यहीं फिनिश करके जाना है। और सत्युग में तो ऊपर से जो पवित्रता, शुद्ध सब कुछ गुण होंगे, वो अपने साथ लेके आएंगे। तो तैयारी करनी है तो अब करनी है। तो एक उसमें से विशेष गुण है हरेक को रिगार्ड देना, मुझे अपने संस्कारों के परिवर्तन के लिए, दैवी संस्कार बनाने के लिए मुझे हरेक को रिगार्ड देना है। ये मैं न सोचूं कि वो योग्य है तो मैं रिगार्ड दूं, और ये योग्य नहीं है तो मैं कैसे रिगार्ड दूं, नहीं। मुझे अपने संस्कार किस प्रकार से बनानी है, रिगार्ड देने के संस्कार, ताकि फिर वो संस्कार हम साथ ऊपर से लेके आए। तो उसमें ये प्रश्न नहीं आ सकता कि हम उसकी विशेषता देखें तो फिर हमको रिगार्ड देना है, हमको रिगार्ड देना है, फुल स्टॉप। क्योंकि ये मुझे अपना नेचुरल स्वभाव, अपना नेचुरल संस्कार बना करके रखना है। तो अब जबकि हम हरेक के मन में ये भावना रखते हैं कि मुझे उनों को उस दृष्टि से देखना है, रिगार्ड की दृष्टि से, और फिर मुझे उनों की विशेषताओं पर ध्यान देना है, तो हमारे संकल्प किस प्रकार से शुद्ध बनते जा रहे हैं वो हम अपने आप को देख सकते। तो फिर उसमें लीकेज नहीं होंगे। किसके गुणों का को देखा तो फिर उससे हमारे अंदर शक्ति आती। और यदि हमने अपने ये जो लीकेज की पॉइंट है उसको बंद कर दी, तो हमारी ताकत बढ़ती जाती है। उस आत्मा को तो चलो संबंध से फायदा होगा ही, और वो भी दुआएं फिर हमें मिलेंगी, परंतु मेन तो हमारे लिए फायदा। हर बात में बाबा का ये शब्द आता, बच्चे जो पुरुषार्थ कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं? अपने लिए ही कर रही हैं, और किसी के लिए नहीं कर रही हैं, शो के लिए नहीं कर रही हैं, बाबा के प्यार में कर रही हैं ताकि हमारा रास्ता सहज हो जाए, परंतु बाबा के लिए भी नहीं कर रही हैं। बाबा तो अभी बाप है तो कितनी मदद कर रहा। 2 सप्ताह पहले की मुरली में बाबा ने कहा, जब बाबा अव्यक्त बाबा की मुरली रिविजन कोर्स की थी, कि अब जब बाबा आपकी चेकिंग करता तो बाप के रूप में रहम की भावना से आपकी चेकिंग करता, अंतिम चेकिंग में धर्मराज का रूप होगा। तो अभी भी बाबा की मदद ले सकते, परंतु जो कुछ हम पुरुषार्थ कर रही हैं अपने लिए कर रही हैं। बाबा के पास तो राजधानी बनाने का प्लान बिल्कुल है और सत्युग तो अवश्य आएगा ही। बीच में दो तीन साकार मुरलियां थी, वो भी शायद दो सप्ताह पहले, जिसमें बाबा हर मुरली में तीन चार दिन लगातार कुछ भी हो जाए सत्युग आएगा जरूर, याद है, अंडरलाइन बाबा करते रहे, कुछ भी हो जाए ये भावी टल नहीं सकती है, सत्युग को आना है जरूर। कोई कितना भी कुछ उसको टालने की कोशिश करे वो भावी टल नहीं सकती, सत्युग को आना है जरूर। परंतु उसमें फिर मुझे क्या पार्ट बजाना है अभी हम चूज कर सकते हैं, बाद में हम चॉइस की बात नहीं होंगी, अभी चॉइस की बात है। कहते हैं कि जिस समय भगवान भाग्य बांट रहा था आप कहाँ थे, तो अब भगवान भाग्य बांट रहा और हम समझ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और यदि फिर भी हम ना पुरुषार्थ करें तो फिर अपनी तकदीर की बात होती। तो हमें एक तो लीकेज स्टॉप करने के लिए क्रिटिसिज्म बंद, और उसके कनेक्शन की ही बात फिर आती है व्यर्थ संकल्प। कितनी अव्यक्त मुरलियां व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करने के लिए बाबा ने चलाई है। ये शब्द बाबा ने बिल्कुल जो शुरुआत की अव्यक्त रिविजन कोर्स की मुरलियां हम पढ़ रही हैं उन सब में से ये बात आती ही आती है। जिस घड़ी ये शुरू की मुरलियां शुरुआत हुई तो मैंने सोचा कि बाबा ने इस बात पर कितना हमारा ध्यान खींचवाया है, और तो भी आज तक भी हम खुद अपनी कंप्लेंट करते हैं व्यर्थ संकल्प के लिए, या तो पर दर्शन पर चिंतन, परंतु उसमें फिर खास पास्ट की बातों को हम भुला नहीं पाते हैं, पास्ट की बातों को हम पकड़ के रखते हैं, उसने ये कहा उसने ये किया, तो ये जो ताकत हमारी खो जाती है व्यर्थ संकल्पों के कारण, उसमें हम यदि थोड़ा ध्यान देवे तो फिर उस पर फुल स्टॉप लगाना भी, थिंक बिफोर यू थिंक, इंजन चालू हो जाए फिर हम सोचें, फिर तो तब तक कुछ शक्ति चले भी गई, परंतु हमने खुद को समझ करके वहां फुल स्टॉप लगा लिया। और फिर साथ साथ हमको ये तरीका आना चाहिए कि हम उस बात को चेंज कैसे करें। अच्छा, कोई बात हमारी स्मृति में आ रही है, मुझे उस बात को फिनिश करना है, पॉजिटिव तरह से मैं उस बात का किस तरह से सोचूं, वो हमारे पास युक्ति होनी चाहिए। या दूसरा तरीका ये है कि सवेरे से ही हम अपने पास शुद्ध संकल्पों का स्टॉक इतना जमा रखें जो फिर ऐसे नहीं कि नेगेटिव शुरू हो रहा फिर हम उसको कन्वर्ट करके चेंज करें, परंतु नहीं, नेगेटिव शुरू होने की मार्जिन ही न हो, क्योंकि हमने अपने पास शुद्ध संकल्पों का स्टॉक इतना रखा है जो वो ऑटोमेटिकली हमारे शुद्ध संकल्प चलते ही रहे। आप देखेंगे कि बहुत कम स्थान होंगे, मैं स्पिरिचुअल बातों के लिए कहती हूं, जहां पर हर रोज सारा संगठित रूप में स्पिरिचुअल स्टडी हो। कई स्थान होंगे जहां पर सब इकट्ठे होकर के मेडिटेशन करते होंगे, परंतु हर रोज नियमित स्पिरिचुअल स्टडी संगठित रूप में हो मैंने नहीं सुना है कहां पर भी। गुरु होगा, महात्मा होगा, कुछ भी होगा, सप्ताह में दो बारी तीन बारी उनके कुछ फिक्स डेज होंगे कि वो आकर के कुछ सुनाते हैं, परंतु बाबा ने ये जो शुरुआत से ही कराची के दिनों से ही ये बात शुरू की है कि बच्चे हर रोज स्टडी पर ध्यान देवे, तो उसका फायदा हमें ये मिलता कि हर रोज बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से स्टॉक मिल जाता है अच्छी बातें सोचने का। जैसे आज बाबा बता रहे थे कि आप हो, आज का टाइटल विशेष क्या था, सेल्वेशन आर्मी, आप हो इनकॉग्निटो रूहानी स्पिरिचुअल सेल्वेशन आर्मी। ये तो एक सेंटेंस मैंने आज की मुरली से उठाया, परंतु वो एक सेंटेंस भी आप अपने यहां पर छाप लो तो कोई भी सिचुएशन में मैं कौन हूं वो बात याद आए और फिर आपकी उस घड़ी वृत्ति और दृष्टि ही बदल जाएंगी। कोई और बात उस समय मार्जिन ही नहीं होंगी आने के लिए। तो हर रोज जो बाबा नई नई बातें हमें दे रहे हैं, जो ब्लेसिंग हमें रोज मिलती है, हर रोज की ब्लेसिंग भी विशेष होती है। यहां जो स्लोगन भी होता, मैंने देखा है कि थोड़े शब्दों के अंदर स्लोगन में भी बहुत कुछ समाया हुआ होता। तो यदि हम साकार मुरली से एक बात उठाएं, दूसरा हम ब्लेसिंग को अपने लिए ले लेवे और तीसरा हम स्लोगन को अपने पास रखें, तो मिनिमम तीन बातें तो हम रोज बाबा की मुरली से ले सकते, जिस आधार से हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हम चालू रख सकते। तो बाबा ने जो हमें दिनचर्या बना करके दी है उसमें बहुत बहुत फायदे की बात होती, उसमें ऐसे फायदा होता जो यदि हम और कुछ बात न करें, सिर्फ दिनचर्या पर हम ध्यान रखें, तो उस अनुसार अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखा बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो सकती। जब बाबा मुझे विदेश में भेज रहे थे, क्योंकि वहां ही रहती थी, फिर भारत में आना जाना होता रहा, बाबा से मुलाकात होती रही, फिर 68 में बाबा ने समर्पण होकर फिर आगरा में भेजा, फिर जनवरी मास बाबा अव्यक्त हो गए, तो बहुत कम समय था जो मैं समर्पण थी बाबा के सामने, फिर बाबा अव्यक्त हो गए, परंतु फिर अव्यक्त बाबा की भी बहुत अच्छी तरह से आज भी जो पालना मिल रही है वो तो हम देख ही रहे हैं, परंतु उन दिनों में तो बाबा की बहुत डिटेल में पालना मिलती रही जैसे साकार बाबा। लास्ट तक भी 80s तक भी पर्सनल मीटिंग्स बाबा की विदेशियों के साथ चलती रही, परंतु जो 69-70s की बात है उसमें तो बाबा बिल्कुल बैठ करके चिटचैट करते थे। तो उस समय बाबा ने मुझे कहा, बाबा ने ये प्रोग्राम बनाया कि मुझे वापस लंदन जाना है, तो बाबा ने कहा कि बाबा कर्म बंधन के हिसाब से बाबा नहीं भेज रहे, परंतु सेवा के हिसाब से बाबा भेज रहे। और उस समय विदेश में कहां पर भी विश्व भर में सेंटर नहीं था, तो बाबा ने कहा कि एक ही बात तुम सिर्फ पक्की याद रखना, मुझे मधुबन की दिनचर्या को फॉलो करना है। ये उस समय की बात, परंतु वो मधुबन की दिनचर्या को फॉलो करने से हमारी जीवन योगी जीवन बच करके रही, वहां का असर नहीं रहा। और फिर साथ ही साथ उसके बाद भी दिनचर्या पर ध्यान रखने से मैंने देखा कि आत्मा को वो ताकत मिलती रहती। तो मुरली सुना और मुरली से हमने कुछ बातें अपने पास ऐसे नोट कर ली जिससे हमारी पॉजिटिव थिंकिंग दिन भर चले, ये एक सहज तरीका होता अपने पास व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने का। तो बाबा ने आज की मुरली में एक तो सेल्वेशन आर्मी की बात बताई और फिर साथ साथ ये जो रिलीजन इज माइट, देवता धर्म की स्थापना बाबा कर रहे हैं और उसमें बाबा हम बच्चों को चांस दे रहे हैं मदद करने के लिए, तो आप सोचो कि भगवान हमें कहे कि हमको आपकी मदद की जरूरत है, ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भगवान हमें विश्व का मालिक बनाते हैं वो तो अलग बात, परंतु भगवान विश्व के परिवर्तन की स्थापना के कार्य में, स्वर के रचने के कार्य में हमें कहे कि हमें तुम्हारी जरूरत है, मददगार बनो, ये तो बाबा की नम्रता, परंतु साथ साथ बाबा का तरीका कि बाबा हमें आगे बढ़ाने चाहते हैं, भाग्य बनाने चाहते हैं। तो मैं देखती हूं कि राजयोग का जो अभ्यास है, वो जो बाबा ने बातें बताई है, हमें राजाई स्वराज पाने के लिए अभी की बातें हैं। तो हम कहां तक अपने मन के मालिक बने हैं, जितना जितना हम इन बातों का प्रैक्टिस करते रहते, उतना हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता कि हाँ, बाबा की जो बातें हैं उससे हमें ताकत भी मिलती, परंतु राजाई हमें अभी ही है। दादियां कई बार ये कहती है कि सत्यु की राजाई को तो देख लेंगे, परंतु आज जो बाबा ने हमें इतना सुख दिया है, आत्मा को भी, और फिर साथ साथ मधुबन में तो हम देखते हैं हर प्रकार से सुविधा भी है, परंतु जो बाबा हमें राजाई अभी दे रही हैं, खुद के संस्कारों के ऊपर, खुद के स्वभाव के ऊपर, खुद के मन के ऊपर, सत्युग में उसका स्वरूप होगा, उसका प्रारब्ध होगा। परंतु अब जब हम अपने जीवन का कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, पहले क्या थे और अब क्या है, तो बाबा के मन से हम गुणगान करते हैं कि रियली बाबा की कमाल है कि हमें यहां तक पहुंचाया है। मनुष्य अपनी शक्ति से यहां तक नहीं पहुंच सकता, बाबा का कार्य भी यहां तक पहुंचे वो तो संभव ही नहीं है, हम आत्माओं के अंदर कोई ऐसी शक्ति थी ही नहीं। परंतु अपनी पर्सनल परिवर्तन के लिए भी अकेला हम नहीं कर पाते थे, बाबा ने इतनी मदद की है, बाबा ने इतना हमें इतना हर प्रकार से सहयोग दिया है हमको आगे बढ़ाने के लिए, जो भगवान शिव के लिए कहते हैं कि कल्याणकारी शिव। तो हम आत्मा का कल्याण किस तरह से कॉन्स्टेंटली होता रहे, बाबा ये जो हमें इतनी बातें दे रहे हैं जिससे हम अभी ही अपने मन का राजा बन सके। तो ये तो अभी प्रैक्टिस की बात होती है कि किस तरह से बाबा हमें सब कुछ ऑफर कर रहा, और यदि आज हम अपने मन का राजा बनने चाहते हैं बन सकते, ऐसे नहीं कि बहुत वर्षों की प्रैक्टिस के बाद बन सकेंगे, नहीं, अब भी बन सकेंगे, और फिर बहुत वर्षों की प्रैक्टिस से वो आदत ऐसे पड़ जाएंगी जो वो नेचुरल बन जाएगा। तो जो बात थी अंत मते सुगते, वो लास्ट का संकल्प तब जबकि आज से हमने अपने मन को कंट्रोल में रखा। तो संकल्प शक्ति इतनी महान है, मुझे मालूम है कि जब हम बाहर वालों के साथ ज्ञान की चर्चा करते हैं, जब हम कभी भी संकल्प शक्ति के टॉपिक को उठाते हैं, लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता। और आजकल विदेश में एक शब्द बहुत यूज करते हैं, माइंडफुलनेस, यहां सुना है वो शब्द, हिंदी में उसका क्या होगा, भाव ये है कि जहां अपने मन को एकाग्र करने चाहे मन वहां पर ही हाजिर रहे। तो विदेश में आजकल ये शब्द बहुत यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको मालूम है कि जो कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी है लोगों की बहुत कम हो गई है, और फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता तो जो भी कार्य व्यवहार होता उसमें कुछ न कुछ फिर कमी पड़ जाती। जब व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट करके कोई काम करता तो उसकी रिजल्ट अच्छी होती, सफलता होती, और यदि कोई व्यक्ति कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता तो फिर उसकी रिजल्ट क्या होंगे, जरूर कुछ गड़बड़ होंगी। तो ये शब्द आजकल बुद्धिज्म से उन्होंने लिया है, परंतु बुद्धिज्म को जन्म देने वाला भारत, और भारत के अंदर जो शब्द है जिससे ये शब्द माइंडफुलनेस निकलता, वो शब्द है स्मृति। पाली भाषा में उन्होंने दूसरा शब्द लिया है, परंतु संस्कृत भाषा का शब्द है स्मृति। तो स्मृति का मतलब है कि हम अपने मन पर अच्छी तरह से काबू रखें, जहां हम अपने मन को ठिकाने पहुंचाएं, वहां ही हमारा मन एकाग्र रहे। अब हम कहते हैं कि हमें बाबा को याद करना है, तो मन हमारा हमें सहयोग देवे, यहां वहां भाग दौड़ न करे। बेशक सेवा की बातें आती है मन में, परंतु ये तो आपको मालूम है कि सेवा की बातों का सोचना उसको योग नहीं कहेंगे, राइट? ये तो समझ गए। तो सेवा अलग सब्जेक्ट, परंतु मन हमारा बाबा की याद में एकाग्र हो, ताकि हमारा संबंध बाबा के साथ गहरा बनता जाए और बाबा के द्वारा जो हमें प्राप्ति मिलनी चाहिए वो हमें प्राप्ति होती रहे। इसमें हमें अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करना होगा। दिन भर का अभ्यास एकाग्रता को पहुंचने के लिए अंतर्मुखता। कार्य भी करें, व्यवहार में भी आए, परंतु अंतर्मुखी होकर के जो कुछ करना है हम करें, अंदर ध्यान हमारा रहे। यदि हमारा बार बार कर्म भी करो परंतु अंदर ध्यान चला जाए, अंदर हम इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, तो फिर कदम कदम पर योग की शक्ति हमारी जमा होती रहेंगी। तो न सिर्फ सवेरे और शाम योग की शक्ति, परंतु कर्म योग। और ये तो आपने देखा है, बाबा ये नहीं कहते हैं कि अपनी ड्यूटी छोड़ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ कर बैठ करके योग करो, और उसमें दो नुकसान होते। एक तो जब तक कार्य व्यवहार में नहीं आए, तब तक हमें अपने संस्कारों का आईना नहीं मिलता, और दूसरा कार्य व्यवहार से जो हमारी श्रेष्ठ कर्म की नींव पड़ती, जिस श्रेष्ठ संस्कारों को हम सत्युग के लिए बनाने चाहते हैं, सिर्फ एक कोने में बैठ करके योग करो तो वो भी नहीं, हमारा भाग्य भी नहीं बनता। तो कई लोग आजकल कहते हैं कि बाबा मुरलियों में इतना ध्यान खिंचवाते हैं कि योग पर ध्यान, योग पर ध्यान, तो क्या हम ऐसे करें? हम और बातों को छोड़ के बस हम योग पर बैठ जाए? तो मुझे लगता है कि एक तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहां तक हमारे संस्कार परिवर्तन हुए हैं। एक अकेला योग में बैठा रहे, बस कहेंगे हम तो बहुत शांत है, बहुत शुद्ध स्वरूप, आत्मा बहुत मीठा रूप धारण कर रही है। किसके साथ फिर व्यवहार में आओ? एक के साथ, पांच के साथ, दस के साथ अनेक लोग अपनी बातें बता रहे हैं, और उस समय हम शांत रहे, शीतल रहे, सबके साथ मीठा व्यवहार करें, यह है योग का प्रूफ। न कि वो तो अलग करके बैठ गए तो खुद को ही नहीं मालूम पड़ता कि कहां तक संस्कार परिवर्तन हुए। और फिर दूसरा, भाग्य बनाने का समय, श्रेष्ठ कर्म करने का समय, वो भी योग की शक्ति से हम श्रेष्ठ कर्म करते जा रहे हैं, परंतु वो भी हमें चांस तब होता है जब हम कर्म और योग कट्ठा कट्ठा करते रहें। तो कर्म और योग अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखता से बार बार हमारा ध्यान बाबा की तरफ जाएगा। बार बार अंतर्मुखी होने से हमारा ध्यान खुद पर भी जाएगा कि अब जो हमारा कार्य चला, किस स्थिति में चला। हम लोग वहां पर लोगों को ये कहते हैं कि मानो कि कितना भी कोई व्यस्त है, अभी कोई डॉक्टर है, एक के पीछे दूसरे पेशेंट आते जाते हैं, परंतु वो जो बीच का टाइम होता, एक पेशेंट गया, अभी तक दूसरे के आने में एक मिनट दो मिनट है, अब वो जो बीच का समय है, उस बीच के समय में आप अपना चार्ट देखो, आप ये देखो कि किस प्रकार से मेरा उसके साथ व्यवहार रहा और मुझे उस पर क्या और चेंज लानी होंगी। कोई और कार्य कर रहा है, कुकिंग कर रही है, तो वो तो बहुत फास्ट सब कुछ करना होता, परंतु एक चीज बन गई, अच्छा ये ठीक, अभी दूसरे के लिए अभी फिर तैयारी कर रही है, वो जो बीच का समय है या अभी 2 मिनट रुकना है, ये चीज यहां तक पहुंची है और अभी 2 मिनट के बाद उसको और आगे नेक्स्ट स्टेप करना है, तो हर बात में बीच में जरूर टाइम मिलता है अपने आप को देखने का, यदि हम चाहें तो। यदि हम इस तरह से अपना चेकिंग भी करेंगे, अभ्यास भी चालू रखेंगे, तो अंतर्मुखी होकर के फिर हमारी बुद्धि को एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएंगी, फिर एक की याद, मन हमारा मन मना भव, ताकि अंत मते सुगते हमारी हो जाए, वो हमारे लिए सहज होगा। तो मन की शक्ति कैसे हमें आगे बढ़ानी है, जो बाबा ने बातें बताई है उसका प्रैक्टिस, हर बात में प्रैक्टिस की बात आती है, ठीक है। ओके, अभी बाबा की याद में बैठते हैं और फिर टोली भी है, दादी का हमेशा संकल्प होता है कि लंदन की टोली बाबा के यहाँ सेवाधारी बच्चों को, समर्पण भाई बहनों को सदा खिलाएं, तो वो कुछ लंदन की टोली भी है। ओम शांति।
आपने बाबा हमें इतनी हंसी तस्वीर दी, आपने बाबा।